अब आगे आपने देखा कि दादाजी प्रीता को गाउन पहनने के शौक को लेकर सबके सामने से ले जाते हैं। सुमन परी को डांटती है, परी सुमन को गाउन पहनने के लिए उकसाती है। गीरथ सुमन को गाउन पहनाने की बात करता है और परी से गाउन की फोटो भेजने को कहता है। परी मन ही मन खुश होती है। कामना इन लोगों को देखकर परेशान होती है। देवांश की कार में दिशा उससे रूही के बारे में पूछती है और रुद्र पर गुस्सा करती है। देवांश उसे शांत करता है और बताता है कि रुद्र अपनी मर्जी का मालिक है। दिशा पूछती है कि रुद्र रूही के साथ क्या करना चाहता है। देवांश कहता है कि रुद्र को गुस्सा दिलाने पर वो कुछ नहीं कर सकता। दिशा कहती है कि रूही को सजा देने का उसे कोई हक नहीं है। देवांश मन में सोचता है कि दिशा को अभी तक समझ नहीं आया कि रुद्र रूही से क्या चाहता है। चैप्टर 23। तब मैंने भाई की आंखों में रूही के लिए एक अलग ही पागलपन देखा, जो मैंने आज के पहले भाई की आंखों में कभी भी किसी के लिए नहीं देखा था। और मैं भाई को अच्छे से जानता हूँ। वे जो एक बार सोच लेते हैं वे करके रहते हैं। अगर उन्हें रूही चाहिए तो अब रूही का भाई को होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, माई गुड गर्ल। देवांश ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में दिशा की आवाज़ पड़ती है, जो उससे कह रही थी, सर प्लीज आप मुझे लेकर जल्दी से रूही के पास चलिए, मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। मुझे जल्द के जल्द उसके पास पहुंचना है। मुझे आपके भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं वे रूही के साथ क्या करेंगे। प्लीज सर आप मुझे जल्दी ले चलिए। दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा को शांत कराते हुए बोला, मिस दिशा आप चिंता मत कीजिए, हम भाई के पास जल्दी ही पहुँच जाएंगे। इतना बोल वे गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जिस तरफ रुद्र की कार गई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र की कार में रूही जैसे ही रुद्र को ये बोलती है कि वे जानवर है और उसे उस जैसे जानवर से कोई भी चूड़ियां नहीं चाहिए, वैसे ही रुद्र रूही के बालों को पीछे से पकड़ उसे खींचते हुए कहता है, माई इनोसेंट रू, अभी मैंने अपना जानवरपन तुम्हारे सामने दिखाया नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपना जानवरपन दिखा दिया ना, तो जो तुम मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत कर रही हो वे नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम मेरा असली रूप देख लोगी, उस दिन तुम अपनी ये जबान मेरे सामने खोलने के पहले हजार बार सोचोगी। इतना बोल वे रूही के बालों को छोड़ देता है। वहीं रूही अब तक रुद्र से काफी डर चुकी थी। डर की वजह से उसके हाथ अपने ही कपड़ों पर कस गए थे। वे अब चुपचाप रुद्र की गोद में बैठी आंसू बहा रही थी। तभी गाड़ी रुकता है और अमन कार के उतरते हुए रुद्र के खिड़की के पास आ दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बॉस हम पहुंच गए। अमन की बात सुनकर रुद्र अपना सर हाँ में हिला, रूही को अपनी गोद से उतार खुद एक एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है, फिर रूही की तरफ देख उसे बाहर आने का इशारा करता है। वहीं रूही रुद्र के डर की वजह से कार के बाहर आने की जगह कार की खिड़की के पास जा चिपक कर बैठ जाती है, जिससे रुद्र उस तक ना पहुँच सके। वहीं रुद्र जब रूही की हरकत देखता है तो वे गुस्से से कहता है, रूह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप बाहर आओ। रुद्र की बात सुनकर भी रूही बाहर नहीं आती, बस उसी तरह डरी सहमी सिमटकर गाड़ी के अंदर बैठी रहती है, जिसे देख रुद्र का दिमाग खराब होने लगता है और वे अपने माथे को दो उंगलियों से सहलाने लगता है। वहीं अमन जो रुद्र के पास में ही खड़ा था, वे जब रुद्र को ऐसा करते हुए देखता है तो अपने माथे से पसीने की बूंदों को साफ करते हुए अपने मन में ही कहता है, ओ गॉड, ये रूही क्यों इस शैतान को गुस्सा दिला रही है। अगर मेरे शैतान बॉस का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया तो ये रूही के लिए भारी पड़ेगा। इतना बोल वे रुद्र को देखने लगता है। वहीं रुद्र जब अब भी रूही को बाहर निकलता हुआ नहीं देखता तो एक झटके में ही कार के अंदर चला जाता है और फिर रूही के करीब आ रूही के डरे सहमे चेहरे को देखता है। फिर रूही का हाथ अपने हाथ से मजबूती से पकड़ उस हाथ को पकड़ तेजी से कार के बाहर खींच लेता है, जिसके रूही सीधा कार के बाहर आ रुद्र के मजबूत सीने से टकरा जाती है। ये सब रुद्र ने इतना जल्दी किया कि रूही को समझने का मौका ही नहीं मिला कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वे रुद्र के कितने करीब है, तो वे तुरंत रुद्र से दूर होकर वहां से जाने को होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ अपनी खतरनाक आवाज में रूही को डराते हुए बोला, रूह क्या तुम चाहती हो कि मैं उस चूड़ी वाले लड़के की तरह यहाँ पर हर किसी की वही हालत करूँ। रुद्र की बात सुनकर रूही डरते हुए अपना सर जल्दी से ना में हिला देती है, जिसे देख रुद्र बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं किसी को मारूं तो चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, वरना मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं। रुद्र की बात सुनकर रूही रोते हुए बोली, पर मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे अपने अनाथ आश्रम जाना है, मुझे दिशा दी के पास जाना है। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही को डरा देने वाले अंदाज में बोला, श्श रूह अभी तुम मेरे साथ हो तो सबको भूल जाओ, चलो हम तुम्हारे लिए खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियां लेते हैं। इतना बोल रूही का हाथ मजबूती से पकड़ अंदर चला जाता है। वहीं रूही रुद्र के डर की वजह से अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला, दादाजी के कमरे में रणवीर दादाजी अपनी प्रीता को लेकर कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर प्रीता के करीब आ अपनी सर्द आवाज में बोले, प्रीत नीचे क्या बोल रही थी तुम, तुम क्या पहनना चाहती थी? रणवीर की बात सुनकर प्रीता हकलाते हुए बोली, मैं कहाँ पहनना चाहती थी, वे तो परी मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं गाउन पहनूं। प्रीता की बात सुनकर रणवीर अपनी सर्द आवाज में बोले, प्रीत अगर परी फोर्स कर रही थी तो क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी? क्या तुम मना नहीं कर सकती थी? तुम वे गाउन पहनकर किसे दिखाना चाहती थी प्रीत? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है जिसके लिए तुम ये गाउन पहन उसे दिखाना चाहती हो? रणवीर जी की बात सुनकर प्रीता को ऐसा लगता है कि वे कहीं जाकर अपना सर पीट ले। फिर भी वे रणवीर जी को समझाते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस उम्र में भला किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी? प्रीता की बात सुनकर रणवीर अपनी खतरनाक आवाज में बोले, इसका मतलब प्रीत अगर तुम्हारी उम्र कम होती तो तुम किसी और के बारे में सोचती, तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाती। रणवीर जी की खतरनाक आवाज सुन प्रीता डरते हुए कहती हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे कहने का वे मतलब नहीं था, मैं आपको छोड़कर भला दूसरे के बारे में क्यों सोचूंगी? प्रीता की बात सुनकर रणवीर जी प्रीता के पास आ उसकी कमर को मजबूती से पकड़ बोले,
प्रीत यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, वरना ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो किसी की भी नज़र तुम पे बर्दाश्त कर लूँगा। मुझे ना पहले तुम पर किसी की नज़रें बर्दाश्त थीं ना अब है। इतना बोल वे प्रीता को वहीं छोड़ बाथरूम में चले जाते हैं। वहीं प्रीता रणवीर जी को जाते देख चैन की सांस लेती है और अपने मन में परी को कोसते हुए कहती है, परी की बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल वे वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाती है।